तो चलिए आज जरा इस बात को समझते हैं कि वास्तविक शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ही प्राप्त होती है। अच्छा, ये विचार है पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य का, जो 20वीं सदी के महान विचारक और गायत्री परिवार के संस्थापक थे। उनका मानना था, आप जानते हैं, कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा तो बस एक शुरुआत है, असली सफ़र तो उसके बाद शुरू होता है। तो पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि डिग्री आपको जानकारी का दरवाज़ा तो दिखा देती है, लेकिन असली ज्ञान की मंजिल तक पहुँचने का रास्ता तो खुद से सीखने से ही बनता है। जब हम खुद उपयोगी पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो ज्ञान हमें सही गलत में फ़र्क करने की समझ देता है, मतलब हमें विवेकशील बनाता है। लेकिन सिर्फ पुस्तकें उठा लेना ही काफ़ी नहीं होता है ना, यहीं पर आती है हमारी दूसरी बात। खुद से सीखने के लिए चाहिए एक मजबूत इरादा और अनुशासन। आपको महाभारत में एकलव्य की कहानी तो याद ही होगी। गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया, पर वो रुके नहीं। अपने संकल्प के बल पर ही उन्होंने खुद सीखा और एक महान धनुर्धर बने। और देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तब होता है असली कमाल। और यही हमारी तीसरी बात है कि ये प्रक्रिया आपकी छिपी हुई शक्तियों को जगाती है। सोचिए, न्यूटन ने सिर्फ एक सेब को गिरते हुए देखकर गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर ली। कैसे? क्योंकि खुद से सीखने की आदत ने उनकी देखने परखने की शक्ति को असाधारण बना दिया था। तो कुल मिलाकर सार ये है कि स्वाध्याय ही वो शक्ति है जो इंसान को विवेकशील, परिवार को सुसंस्कृत और समाज को बेहतर बनाती है।
आजकल हम सब, मतलब हम में से ज्यादातर लोगों के पास स्कूल कॉलेज की डिग्रियां तो हैं, पर एक सवाल है, क्या हम सच में शिक्षित हैं? आज हम पूज्य गुरुदेव की रचना स्वाध्याय और सत्संग के एक अध्याय पर गौर करेंगे जो हमारे शिक्षा की इस पूरी धारणा को ही चुनौती देता है। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं कि असली ज्ञान आखिर है क्या।
ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कूलों में जो जानकारी मिलती है या परीक्षा पास करना, वो शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है, वो पूरी मंजिल नहीं है।
अच्छा,
असली शिक्षा की जो यात्रा है वो तो स्वाध्याय से शुरू होती है, मतलब खुद को शिक्षित करने की कला से।
स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी।
हम इसे अक्सर बस पुस्तकें पढ़ना समझ लेते हैं, पर क्या इसका कोई और गहरा मतलब भी है?
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव इसे तीन हिस्सों में बांटते हैं, अध्ययन, चिंतन और मनन।
अध्ययन, चिंतन और मनन।
हाँ, और इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अध्ययन है नई जानकारी इकट्ठा करना, जैसे कोई पुस्तक पढ़ना।
ठीक है, फिर आता है चिंतन। ये है उस जानकारी पर गहराई से सोचना, उसके अलग अलग पहलुओं को समझना, सवाल करना।
और मनन
सबसे गहरा है, उस ज्ञान को अपने जीवन और अनुभव से जोड़कर देखना, उसे अपनी आदत और व्यवहार में उतारना।
अच्छा,
बिना इस पूरी प्रक्रिया के ज्ञान तो वो तो तोते के रटे हुए शब्दों जैसा है जो जरूरत पड़ने पर दिमाग से उड़ जाता है।
तो ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे पचाकर अपनी शक्ति बनाना है।
ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, क्या इससे हमारी कोई छिपी हुई काबिलियत भी बाहर आ सकती है?
यही तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। पूज्य गुरुदेव न्यूटन का उदाहरण देते हैं।
हाँ।
पेड़ से सेब गिरते तो सदियों से सबने देखा था, ये एक आम घटना थी, लेकिन न्यूटन ने उसे सिर्फ आंखों से नहीं देखा, अपने मन से उसका निरीक्षण किया।
ये जो निरीक्षण की शक्ति है, मतलब गहराई से देखने और सवाल पूछने की आदत, ये स्वाध्याय से ही विकसित होती है।
वाह, मतलब जिसे हम न्यूटन के जीनियस का एक पल समझते हैं, वो असल में सालों के स्वाध्याय और गहरी सोच का नतीजा था। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है कि महानता कोई जन्मजात तोहफा नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे कोई भी सीख सकता है ना?
बिल्कुल, और यही दृढ़ संकल्प हमें एकलव्य की कहानी में भी दिखता है।
हाँ, एकलव्य।
गुरु के मना करने के बावजूद उसने स्वाध्याय के दम पर खुद को अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना लिया। यह आत्म शिक्षण की शक्ति का प्रतीक है।
लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है।
जी।
एकलव्य की तरह बिना गुरु के स्वाध्याय करने में भटकने का भी तो खतरा रहता है, क्या पूज्य गुरुदेव इस पहलू पर कोई रोशनी डालते हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब सदाचार में छिपा है।
सदाचार में? कैसे?
पूज्य गुरुदेव का तर्क है कि सच्चा स्वाध्याय सिर्फ एक सदाचारी यानी नैतिक और अनुशासित व्यक्ति ही कर सकता है। आप सोचिए, एक अशांत या अनैतिक मन में इतनी स्थिरता ही नहीं होती कि वो किसी विषय पर गहराई से मनन कर सके और सही गलत का फर्क समझ सके।
अच्छा,
तो सदाचार एक तरह का आंतरिक कंपास है जो हमें ज्ञान के मार्ग पर भटकने से बचाता है।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि असली शिक्षा सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि चरित्र का भी विकास करती है।
बिल्कुल,
ज्ञान और सदाचार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
सार ये है कि जिस देश के नागरिक स्वाध्यायी होते हैं उसी का भविष्य उज्ज्वल होता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो हमारी भीतरी शक्तियों को विकसित करे, ना कि हमें केवल किताबी ज्ञान देकर निकम्मा बनाए।
तो कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा हमें दरवाजे तक ले जाती है, पर असली ज्ञान का सफर हमें खुद स्वाध्याय के रास्ते पर चलकर ही पूरा करना होता है।
एकदम सही, और यहीं पर एक जरूरी सोच पैदा होती है।
अगर हमारी सहज और ईश्वर प्रदत्त शक्तियां सही शिक्षा के अभाव में दब जाती हैं, तो आज के दौर में औपचारिक शिक्षा के बाहर अपने दैनिक जीवन में स्वाध्याय की उस लौ को कैसे जलाया जा सकता है ताकि उन सोई हुई क्षमताओं को फिर से जगाया जा सके।
प्रदीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद सीखने और सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दे। हमारे पास पूज्य गुरुदेव की लिखी एक पुस्तक है, स्वाध्याय और सत्संग, और हम इसके छठे अध्याय में मतलब गहराई से उतर रहे हैं।
और शीर्षक है, वास्तविक शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ही प्राप्त होती है।
बिल्कुल।
और ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक विचार नहीं है।
हाँ।
ये हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम पर
और हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ पर
एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता
है। सही बात है। मतलब इसका जो मूल तर्क है वो ये कि हमारी स्कूल और कॉलेज की डिग्रियां वो हमें सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाती हैं।
बस एक शुरुआत है। असली ज्ञान, असली इनोवेशन तो वहां से शुरू होता है जहां क्लासरूम खत्म होता है।
बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये स्वाध्याय आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ अकेले बैठकर पुस्तकें पढ़ना है?
या उससे कुछ ज्यादा है?
और क्या ये सच में इतना शक्तिशाली है कि ये तय कर सके कि एक व्यक्ति और एक राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा?
चलिए इस दिलचस्प विचार की परतें खोलते हैं।
चलिए
तो चलिए शुरू करते हैं उस बुनियादी सवाल से जो पूज्य गुरुदेव उठाते हैं।
जी।
आज हर तरफ स्कूल कॉलेज हैं, डिग्रियां हैं, और माना भी यही जाता है कि शिक्षा वो चीज है जो इंसान को जानवर से अलग करती है,
हमें सोचने समझने वाला प्राणी बनाती है।
हाँ। लेकिन क्या कुछ पुस्तकें रटकर परीक्षा पास करके जो सर्टिफिकेट मिलता है क्या वही असली शिक्षा है?
यहीं पर आप देखिए पूज्य गुरुदेव एक बहुत तीखी लेकिन जरूरी बात कहते हैं।
क्या?
उनके अनुसार स्कूल और कॉलेज हमें भाषा और विषयों की बस पहचान कराते हैं।
अच्छा।
वे हमें औजार चलाना सिखाते हैं लेकिन उन औजारों से क्या बनाना है ये नहीं सिखाते।
वाव, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है।
हाँ, वो एक तरह से आपको लर्नर्स लाइसेंस देते हैं लेकिन गाड़ी चलाना और अपनी मंजिल तक पहुंचना
वो आपको खुद ही सीखना पड़ता है।
ये लर्नर्स लाइसेंस वाली बात तो मतलब एकदम सही है। असल सफर तो उसके बाद ही शुरू होता है। तो फिर असली ज्ञान आता कहां से?
असली ज्ञान पूज्य गुरुदेव के अनुसार तब शुरू होता है जब हम उन सिखाए गए तरीकों का इस्तेमाल करके खुद अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, उन पर सोचते हैं, मनन करते हैं। और यहीं पर वो एक बहुत शक्तिशाली उपमा का इस्तेमाल करते हैं, पिंजरे में बंद तोते की।
अच्छा, ये क्या है?
उनका कहना है कि जो ज्ञान हमें रटाया जाता है वो उस तोते की तरह है जो कुछ शब्द बोलना सीख गया है लेकिन जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है
या कोई नई स्थिति आती है,
हाँ, या कोई अप्रत्याशित स्थिति आती है तो वो सब भूल जाता है। वो ज्ञान मतलब टिकाऊ नहीं होता।
ये तो हम सब ने महसूस किया है, परीक्षा के लिए जो रात भर जाके रटा।
बिल्कुल।
वो परीक्षा के अगले दिन ही दिमाग से गायब हो जाता है।
गायब।
लेकिन जिस चीज को हमने खुद मेहनत करके दिलचस्पी लेकर समझाओ वो जिंदगी भर याद रहती है,
हमेशा।
पर क्या इसका मतलब ये है कि स्कूली शिक्षा बेकार है? मतलब क्या हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात स्कूली शिक्षा को नकारने की नहीं है बल्कि उसकी सीमाओं को समझने की है।
ठीक है।
स्कूल हमें वो बुनियादी ढांचा देता है जिस पर हम ज्ञान की इमारत खड़ी कर सकते हैं।
एक फाउंडेशन।
हाँ, एक फाउंडेशन। वो हमें वर्णमाला सिखाता है लेकिन कविता हमें खुद लिखनी पड़ती है।
सही है।
पूज्य गुरुदेव का तर्क ये है कि हम में से ज्यादातर लोग उस बुनियादी ढांचे को ही मंजिल मानकर रुक जाते हैं।
सीखना बंद कर देते हैं,
सोचना बंद कर देते हैं। और एक समाज जो सोचना बंद कर दे वो आगे कैसे बढ़ेगा?
तो ठीक है, ये साफ हो गया कि स्कूल एक शुरुआत है, अंत नहीं, और असली ज्ञान स्वाध्याय से आता है।
जी।
तो अब इस शब्द को ही पकड़ते हैं, ये स्वाध्याय आखिर है क्या भला? ये सिर्फ सेल्फ स्टडी का हिंदी अनुवाद तो नहीं लगता?
नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पूज्य गुरुदेव इसे तीन हिस्सों में तोड़ते हैं, अध्ययन, चिंतन और मनन।
अध्ययन, चिंतन और मनन।
हाँ। अध्ययन यानी पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना, ये तो पहला स्टेप है, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं।
अच्छा,
स्वाध्याय का असली जादू अगले दो कदमों में है। चिंतन यानी उस जानकारी पर सोचना, उसके अलग अलग पहलुओं को देखना, सवाल उठाना। और मनन यानी उस सोची समझी बात को अपने जीवन का, अपने अनुभव का हिस्सा बना लेना।
इसे समझने के लिए कोई उदाहरण दे सकती हैं?
बिल्कुल। मान लीजिए आपने कहीं पढ़ा कि रोज व्यायाम करना सेहत के लिए अच्छा है।
ठीक है,
ये हुआ अध्ययन। फिर आपने उस पर चिंतन किया, क्यों अच्छा है, मेरे शरीर पर इसका क्या असर होगा, कौन सा व्यायाम मेरे लिए सही है,
मेरे पास कितना समय है, ये सब सवाल।
हाँ, ये सारे सवाल जब आप ये खुद से पूछते हैं तो आप सिर्फ एक तथ्य को दोहरा नहीं रहे बल्कि उसे अपने हिसाब से समझ रही हैं। और फिर जब आप एक योजना बनाकर उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेती हैं और उसके फायदों को महसूस करती हैं, वो है मनन।
अच्छा,
अब ये ज्ञान आपका अपना है, किसी पुस्तक का नहीं।
वाह, मतलब स्वाध्याय सिर्फ जानकारी लेना नहीं बल्कि उसे एक जासूस की तरह इन्वेस्टिगेट करना है।
क्या बात है,
आप सिर्फ तथ्य नहीं पढ़ रहे, आप सुराग गोज रहे हैं, उन बिंदुओं को जोड़ रहे हैं जो शायद किसी और को नहीं दिखें।
बिल्कुल।
और फिर उस आहा वाले पल तक पहुंच रहे हैं जब आपको कोई चीज सच में समझ आती है।
आपने एकदम सही पकड़ा, डिटेक्टिव या जासूस शब्द इसके लिए परफेक्ट है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया के सारे बड़े आविष्कार और खोजें इन्हीं स्वाध्यायी जासूसों ने की है।
उन्होंने किसी क्लासरूम में बैठकर ये नहीं सीखा?
नहीं, उन्होंने अपने दम पर सीखा, अपनी जिज्ञासा के दम पर। स्वाध्याय से मिला ज्ञान आपका अपना होता है, वो आपकी खोज का इनाम होता है, इसीलिए वो टिकाऊ होता है।
ठीक है, तो अगर ये स्वाध्याय इतना शक्तिशाली है तो जो लोग इसे अपनी आदत बना लेते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनमें कुछ खास गुण आ जाते हैं?
हाँ, और पूज्य गुरुदेव यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प गुणों की बात करते हैं।
जैसे?
सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण है विचारों में दृढ़ता, या कहिए संकल्प की शक्ति, मतलब एक बार जो ठान लिया उसे पूरा करने का जज्बा। इसके लिए वो एकलव्य का क्लासिक उदाहरण देते हैं।
एकलव्य की कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन उसे स्वाध्याय के नजरिए से देखना ये दिलचस्प होगा।
जरा सोचिए, उस वक्त के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से साफ मना कर दिया।
हाँ।
एक आम इंसान के लिए तो ये बहुत बड़ी निराशा की बात होती, वो शायद हार मानकर घर लौट जाता।
बिल्कुल।
लेकिन एकलव्य के अंदर सीखने की जो आग थी, जो स्वाध्याय की इच्छा थी, वो इस इनकार से बुझी नहीं बल्कि और भड़क गई।
उसने किसी गुरु का इंतजार नहीं किया?
नहीं, उसने गुरु की मूर्ति बनाई और खुद ही अभ्यास में जुट गया।
और नतीजा ये हुआ कि वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। मतलब यहाँ संदेश ये है कि अगर आपके अंदर सीखने का संकल्प है तो आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है।
सही बात है।
आज के जमाने में देखें तो ये उन लोगों की तरह है जो YouTube और ऑनलाइन फोरम से कोडिंग सीखकर बड़ी बड़ी कंपनियां बना देते हैं
बिना किसी फैंसी कंप्यूटर साइंस डिग्री के।
हाँ
बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता और दृढ़ता स्वाध्याय का पहला बड़ा तोहफा है। दूसरा गुण जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं वो थोड़ा हैरान करने वाला है।
वो क्या है?
एकांत प्रियता, यानी अकेले रहने में सुकून मिलना।
अच्छा।
उनका तर्क है कि गहरा चिंतन और मनन शोरगुल में संभव ही नहीं है। जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने विचारों को ठीक से सुन पाते हैं, उन्हें व्यवस्थित कर पाते हैं।
ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
बहुत बड़ी।
हम तो हमेशा शोर से घिरे रहते हैं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, लगातार भाग दौड़। एकांत तो जैसे एक लग्जरी बन गया है।
और शायद इसीलिए गहरे और मौलिक विचार भी कम होते जा रहे हैं।
हो सकता है।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति एकांत पसंद करता है वो प्रकृति से भी जुड़ता है, और प्रकृति तो ज्ञान का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय है। यहीं पर वो सर आइजैक न्यूटन का उदाहरण देते हैं।
सेब गिरने वाली कहानी?
हाँ, लेकिन उसे एक नए नजरिए से देखिए। हजारों सालों से पेड़ों से सेब जमीन पर ही गिर रहे थे।
हाँ, करोड़ों लोगों ने देखा होगा।
देखा, उठाया और खा लिया, ये एक आम घटना थी। लेकिन एक दिन न्यूटन, जो अपने शांत चिंतनशील स्वभाव के लिए जाने जाते थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने भी सेब को गिरते देखा, लेकिन उनके स्वाध्यायी मन ने एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी ने नहीं पूछा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं गया।
वाह, ये देखने और निरीक्षण करने में फर्क है। हम सब देखते हैं पर निरीक्षण कोई कोई ही करता है।
बिल्कुल, और ये निरीक्षण की शक्ति, ये गहरी अवलोकन क्षमता स्वाध्याय से ही विकसित होती है।
अच्छा।
जब आपका मन शांत होता है तभी आप उन पैटर्न्स को देख पाती हैं जो दूसरों को नजर नहीं आते। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसी क्लासरूम में नहीं
बल्कि एकांत में हुए गहरे चिंतन से पैदा हुआ था।
हाँ, स्वाध्याय आपको सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि सही मायनों में देखना सिखाता है।
तो मतलब दृढ़ संकल्प और शांत मन से निरीक्षण की क्षमता, ये तो काफी शक्तिशाली गुण
है।
लेकिन इसके बाद जो बात आती है वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो है सदाचार और स्वाध्याय का कनेक्शन। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सच्चरित्र व्यक्ति ही स्वाध्यायी होता है। ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता? एक व्यक्ति के चरित्र का उसके सीखने की क्षमता से क्या लेना देना?
ये पहली बार सुनने में थोड़ा पुराना या नैतिक उपदेश जैसा लग सकता है ना?
हाँ।
लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं कॉग्निटिव तर्क है।
अच्छा।
यह दुष्चरित्र का मतलब सिर्फ नैतिक रूप से बुरा व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन बिखरा हुआ है, जो अपनी इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम है,
जिसका ध्यान हर पल भटकता रहता है।
बिल्कुल।
अच्छा, तो इसे आप आज की भाषा में कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो सस्ते डोपामाइन हिट्स के पीछे भाग रहा है।
एकदम सही।
जैसे लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या दूसरी बुरी आदतें।
बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, ऐसा बिखरा हुआ मन क्या किसी एक विषय पर घंटों तक गहराई से सोच सकता है?
नहीं, मुश्किल है।
क्या वो किसी जटिल समस्या पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह के गहरे काम के लिए, चाहे वो वैज्ञानिक शोध हो, कला हो या आध्यात्मिक साधना हो, जबरदस्त मानसिक अनुशासन और फोकस की जरूरत होती है। सदाचार या अच्छा चरित्र आपको वही मानसिक स्थिरता और नैतिक शक्ति देता है।
मतलब चरित्र यहाँ एक नैतिक तमगा नहीं बल्कि उच्च स्तरीय मानसिक प्रदर्शन के लिए एक जरूरी शर्त है।
हाँ, एक प्री रिक्विजिट है।
जैसे एक एथलीट को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए साफ सुथरा खाना खाने की जरूरत होती है।
बिल्कुल।
वैसे ही एक गहरे विचारक को अपने मन को विकर्षणों और नकारात्मकता से साफ रखने की जरूरत होती है। ये तो नींव की तरह है,
जिसके बिना ज्ञान की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। आपने इसे बहुत अच्छे से समझा।
जब आपका मन शांत और अनुशासित होगा तभी आप सही और गलत में फर्क कर पाएंगी, तभी आप ज्ञान की गहराई में उतर पाएंगी। तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार ज्ञान की साधना से पहले चरित्र की साधना जरूरी है।
ठीक है, अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं। हमने समझा कि असली शिक्षा स्वाध्याय है।
हाँ।
स्वाध्याय व्यक्ति में दृढ़ता, अवलोकन की शक्ति और एक अनुशासित मन होता है। लेकिन ये सब व्यक्तिगत बातें हैं।
हाँ।
इसका समाज या देश से क्या लेना देना?
यहीं पर पूज्य गुरुदेव इस व्यक्तिगत गुण को राष्ट्र के भविष्य से जोड़ते हैं।
हाँ, और ये इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका तर्क बहुत सीधा है, जैसे नागरिकों से देश बनता है वैसे ही स्वाध्याय नागरिकों से एक प्रगतिशील और उज्जवल भविष्य वाला देश बनता है।
मतलब?
जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ रटना जानते हैं, आदेश मानना जानते हैं, लेकिन खुद से सोचना, सवाल करना या नई चीजें खोजना नहीं जानते।
तो
ऐसा देश सिर्फ अतीत की नकल कर सकता है, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता।
और वो देश जो स्वाध्यायी लोगों से भरा हो,
वहाँ इनोवेशन होगा, नई खोजें होंगी, कला और विज्ञान का विकास होगा, लोग समस्याओं के नए समाधान खोजेंगे क्योंकि वे समस्याओं को एक नए नजरिए से देखना जानते हैं। वे सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता होंगे। इसी बिंदु पर पूज्य गुरुदेव उस समय की शिक्षा पद्धति की कड़ी आलोचना करते हैं।
क्या आलोचना करते हैं?
उनका मानना था कि शिक्षा का काम बच्चों के अंदर ईश्वर द्वारा दी गई स्वाभाविक शक्तियों जैसे जिज्ञासा, कल्पना, तर्क को विकसित करना है।
हाँ, उन्हें बाहर लाना है।
लेकिन हमारी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति इन शक्तियों को विकसित करने की जगह उन्हें दबा देती है
या
खत्म ही कर देती है।
सही बात है।
वो बच्चों को सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि चुपचाप जवाब सुनने के लिए तैयार करती है।
ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। हम अक्सर बच्चों पर मंद बुद्धि या स्लो लर्नर का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी बालक मंद बुद्धि पैदा नहीं होता।
बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये हमारी शिक्षा और हमारे दिए गए संस्कारों का दोष है जो उस बच्चे की क्षमताओं को खिलने का मौका ही नहीं देता।
अच्छा।
उन्होंने एक पौधे का उदाहरण दिया है। अगर एक बीज को सही मिट्टी, हवा, पानी और रोशनी न मिले तो वो मुरझा जाएगा। इसमें बीज का क्या दोष है?
दोष तो माली का या वातावरण का है।
बिल्कुल। इसी तरह हर बच्चे में अपार क्षमताएं होती हैं, बस हमारी शिक्षा व्यवस्था उन क्षमताओं को पोषित करने में नाकाम रहती है।
तो शिक्षा का असली मकसद उन छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाना है, उन्हें दबाना नहीं। और स्वाध्याय वही प्रक्रिया है
जो एक व्यक्ति को अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाती है।
एकदम। पूज्य गुरुदेव के अनुसार स्वाध्याय के बिना शिक्षा अधूरी नहीं बल्कि व्यर्थ है।
व्यर्थ?
हाँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो स्वाध्याय नहीं करता वो बौद्धिक रूप से एक अशिक्षित व्यक्ति के बराबर ही है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है।
फिर सुधार ली हुई जानकारी।
उधार ली हुई जानकारी।
तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि असली शिक्षा किसी डिग्री या सर्टिफिकेट का नाम नहीं है।
नहीं है,
वो एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे स्वाध्याय कहते हैं। ये सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि एक जासूस की तरह सोचना, एक योगी की तरह मन को अनुशासित करना
और एक वैज्ञानिक की तरह दुनिया का निरीक्षण करना है। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, ये एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है।
हाँ।
एक ऐसा समाज जो अपने नागरिकों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करता है वही समाज असल में तरक्की कर सकता है।
बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि हमारी एक छोटी सी आदत का असर कितना बड़ा हो सकता है।
और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे।
जरूर।
अगर पूज्य गुरुधीर के अनुसार एक व्यक्ति का विकास और एक राष्ट्र का भविष्य उसके नागरिकों की स्वाध्याय की आदत पर निर्भर करता है, तो जरा सोचिए। आज इसी वक्त ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बारे में आप सच में उत्सुक हैं? वो कौन सा एक विषय है जिसे आप किसी कोर्स का इंतजार किए बिना,
किसी शिक्षक के बिना
खुद से खोजना और समझना शुरू कर सकते हैं? शायद उस छोटी सी खोज की शुरुआत ही वास्तविक शिक्षा की ओर आपका पहला कदम हो।